Om Shanti and good evening to all of you. आज के इवनिंग सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. I would like to begin this session by calling our chief speakers, the esteemed speakers on the dais. First, I would like to call upon Dr. B.K. बिन्नी. आपसे निवेदन है आके मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें. जोरदार से तालियों के साथ इनका स्वागत करें. हमारे नेक्स्ट स्पीकर हैं जयप्रकाश नारायण मिश्रा, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस ऑफ लिविंग, जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट. आपसे निवेदन है आके अपना स्थान ग्रहण करें. कृपया तालियों को जारी रखें. हमारे नेक्स्ट स्पीकर हैं मिस्टर संतोष पांडा जी, चेयरमैन नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन. आपसे भी निवेदन है आके अपना स्थान ग्रहण करें. श्री जयप्रकाश नारायण मिश्रा जी, संतोष पांडा जी, ब्रह्मा कुमारी बिन्नी बहन, तालियों में कंजूसी ना करें. आपका फिर से आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है. आज का सेशन वैल्यूज एंड स्पिरिचुअलिटी फॉर बेटर गवर्नेंस. इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू नरेट वन ऑफ द कन्वर्सेशंस विच आई हैड विद वन ऑफ द यंग स्टूडेंट्स. एक्चुअली बात क्या चल रही थी, बात चल रही थी वैल्यूज की. एंड वी वर आस्किंग व्हाट आर द वैल्यूज विच आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू यू. और उनमें से एक बच्चे ने कहा, एक यंग विद्यार्थी था, उसने कहा ग्रीड, लालच. अब आप सोच सकते हैं आज की दुनिया में ग्रीड इज वन ऑफ द वैल्यूज. और उसने कहा, बड़े प्यार से कहा, उसने कहा ग्रीड इज नेसेसरी इन टूडेज वर्ल्ड. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू नीड टू बी ग्रीडी टू गेट मार्क्स. यू नीड टू बी ग्रीडी टू गेट गुड ग्रेड्स. यू नीड टू बी ग्रीडी टू गेट अ गुड जॉब. यानी हम सोच सकते हैं कि आज के जो यंग लोग हैं उनके वैल्यूज क्या जा रहे हैं, what they are thinking about, their sense of purpose, everything is getting polluted. और यही जो विद्यार्थी हैं, यही जो यंग लोग हैं, they'll actually become leaders of tomorrow. And when we talk of governance, we are actually talking about leadership. We are talking about those people who can inspire, who can motivate others, and most importantly, who can make a difference in others' life. इसलिए आज का सेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है. यानी कि हमें क्या करना है, वेदर वी वॉन्ट टू लीड फ्रॉम हार्ट, वेदर वी वॉन्ट टू रियली हैव अ वैल्यू बेस्ड गवर्नेंस, एंड वेदर इट इज रियली द टाइम वेयर वी थिंक वैल्यूज आर रियली इम्पॉर्टेंट. और इस सेशन को बढ़ाने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर बिन्नी बहन. आपका थोड़ा सा परिचय देना चाहेंगे. आप वर्तमान समय में हेड हैं पब्लिक रिलेशन एंड मास मीडिया ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जो हमारा यहाँ माउंट आबू में है, उसमें आप पब्लिक रिलेशन हेड हैं. यू आर ऑल्सो द एडिटर ऑफ ग्लोबल हॉस्पिटल न्यूज लेटर स्वास्थ्य. और आपको कई अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है. उनमें से कुछ अवार्ड हैं ऑनर ऑफ एप्रिशिएशन एंड रिकॉग्निशन फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑनरेबल श्रीमती प्रतिभा पाटिल, आई शुड से एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फॉर हर फर्स्ट डॉक्टरेट अवार्ड इन सब्जेक्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज. You have also received award and medal of an outstanding student in MA and merit scholarship in BA. और आप जगह जगह अपने courses, lectures भी कराते रहते हैं तो ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तित्व को हम बुलाना चाहेंगे कि आज के सेशन को आगे बढ़ाएं। ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर बिन्नी बहन।
गुड इवनिंग, ओम शांति एंड ग्रीटिंग्स ऑफ पीस एंड लॉट ऑफ वैल्यूज टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा जो विषय है, जैसा कि हम दो दिन से सुन रहे हैं, वैल्यूज एंड स्पिरिचुअलिटी फॉर गुड गवर्नेंस, जिसमें कि विशेष रूप से हम कैसे इसको अपनी लाइफ के अंदर हर व्यक्ति, हर प्रोफेशन वाला, एक तो जहां बात हो रही है कि हम चाहते हैं, वी वांट दैट वी शुड प्रैक्टिस वैल्यूज इन अवर लाइफ, और दूसरा ये कि जो सबसे सुंदर और सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म हमें जो एजुकेशनिस्ट को मिला है, मैं समझती हूं कि ये कितना वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है, जिसमें कि हम सभी प्रैक्टिकल वे में वैल्यूज को कॉन्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। एंड दिस इज अ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ गुड गवर्नेंस। और मुझे आज भी एक्सपीरियंस है कि जब मैं स्कूल टीचर थी तब भी बहुत एक सुंदर मौका मिलता था उसको प्रैक्टिस करने का, कि जब हम स्टूडेंट्स के अंदर बहुत छोटी छोटी, बहुत सिंपल वैल्यूज के साथ में जब हम इंटरेक्ट करते थे, तो शायद स्टडी के बाद या स्कूल कंप्लीट करने के बाद भी वो ज्यादा जो याद रखते थे वो टीचर्स का एक, कहें कि बहुत सुंदर छोटे शब्दों में एप्रिशिएशन, या फिर उनके अंदर जो इनकरेजमेंट हमने दिया वो हमेशा याद रखते थे। और आज हमारे जीवन के अंदर भी ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज हैं जो हमें लाइफ में हेल्प करती हैं, और मुझे भी अपने में कुछ दो तीन अनुभव जरूर इसमें शेयर करना चाहूंगी। जब स्पिरिचुअलिटी एंड वैल्यूज की हम बात कर रहे हैं, तो मुझे एक लर्निंग एक्सपीरियंस मिला। सबसे पहले कि मुझे जो ये मौका मिला स्पिरिचुअलिटी एंड वैल्यूज के सब्जेक्ट को लेकर रिसर्च करने का, तो उसमें जब देखा कि किस प्रकार से जो स्पिरिचुअलिटी है उतनी ही सिंपल है, इतनी ही डीप है, एंड इट इज अ इनर फ्रेग्रेंस ऑफ सोल, एंड व्हेन वी एक्सप्लोर एंड मोर वी फाइंड दैट इट इज सो इंटीग्रेटेड। क्योंकि रिलीजन्स के नाम, रिलीजन्स जैसे जैसे आते हैं उस समय उसको डिवाइड कर दिया जाता है और उसका जो शेप है वो ही बदल गया है। लेकिन वैसे हम लाइफ के अंदर देखें तो स्पिरिचुअलिटी जो है, जैसे कि लैटिन लैंग्वेज में पहले स्पिरिचुअस से ये मीनिंग निकला, जिसको पहले ब्रीदिंग से ले लिया गया, और हम आज के कॉन्सेप्ट में लेते हैं, तो आप देखिए कि जैसे अध्यात्म शब्द बना है वो भी आत्म से बना है, उसी प्रकार से जो स्पिरिचुअलिटी में भी देखिए तो स्पिरिट आता है शब्द, तो आप देखिए वो कितनी की फाउंडेशन है। तो यहां पर ब्रह्मा कुमारीज वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में जो हमें सीखने का मौका मिला, सबसे पहले कि कैसे हमारे लाइफ के अंदर जो स्टडी है, सबसे पहले जो हमारी एवरीडे मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल स्टडी है, जिसका कि लिंक हमारे जीवन में वैल्यूज के साथ में है, तो कैसे हम अपने जीवन में वैल्यूज को धारण करें। मुझे आज भी एक स्टोरी याद आती है कि एक बार, क्योंकि पहले जैसे गुरुकुल सिस्टम हुआ करता था और उस समय तो पूरा सिस्टम ही अलग हुआ करता था, और उस समय गुरु जब जा रहे थे कुछ दिन के लिए, तो उन्होंने अपने शिष्य को कहा कि मैं जा रहा हूं और तुम पीछे से पूरा ध्यान रखना, मैं एक महीने तक यहां नहीं रहूंगा। और उसी समय जब उन्होंने कहा कि ध्यान रखना, तो शिष्य ये नहीं समझ पाया कि मैं क्या ध्यान रखूं, तो उसने फिर गुरुजी से पूछा कि क्या मतलब है ध्यान रखने का, पीछे से ध्यान रखने का क्या मतलब है। तो उसी समय गुरु जी ने एक शब्द में कहा, अवेयरनेस, जागृति। शिष्य को फिर ये बात कुछ समझ नहीं आई और फिर उन्होंने दोबारा जो है गुरु से वही प्रश्न किया, अवेयरनेस क्या है, जागृति क्या है। तो गुरु ने कुछ नहीं बोला, एक स्लिप पे लिख के दे दिया अवेयरनेस, जागृति। और फिर भी उसको मतलब नहीं समझ में आया तो फिर वापस स्लिप पर लिख के दिया अवेयरनेस अवेयरनेस अवेयरनेस। यानी एक ऐसा भाव कि जिसमें जब हम अलर्ट रहते हैं, अवेकन्ड रहते हैं और हमारे जीवन में हम कुछ करना चाहते हैं, यानी जो हम सोचते हैं वो हम करते हैं, और पूरा अटेंशन रखना, अवेयरनेस जो स्पिरिचुअलिटी हमें स्टार्ट में ही देती है कि हमारे शब्दों से लेकर हमारे बिहेवियर में हम कैसे उस अवेयरनेस को ले। थोड़ा लाइट ऑफ करें। कुछ एक बातें आपसे शेयर करना चाहूंगी जो कि मुझे अपने रिसर्च के दौरान और प्लस यहां ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से हमें काफी जो रोज की बातों में हमें स्पिरिचुअलिटी मिलती है और उसमें हम ये देखते हैं कि हम जीवन में कैसे आगे बढ़ते रहें। और अगर हम वैल्यूज को ले, इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, हम सभी आप सभी यहां बहुत मंच पर और हमारे सामने बहुत विद्वान बैठे हैं, लेकिन सुंदर सी एक सिंपल सी बात जो हमें सीखने के लिए मिलती है, थिंग्स दैट हैव वैल्यू। यानी हम एक जो सिंपल सा भी कार्य करते हैं अगर हम उसमें वैल्यूज को जोड़ लेते हैं तो हमारे जीवन में बहुत हम आगे बढ़ते हैं, यूजफुल भी है। जैसे आज का जो टॉपिक है गुड गवर्नेंस को हम ले लें, गुड एक्शंस को ले लें, गुड थॉट्स को ले लें। और एक बहुत सुंदर इंटरनेशनल जो एक अर्थ के रूप में लिया गया है वो भी वैल्यूज आर सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, हमारे जीवन के रोज के सिद्धांत पे और जिसे हम महत्व देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब वैल्यूज को हम लेते हैं तो स्पिरिचुअलिटी साथ साथ में इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी इज द डिवाइन फ्रेग्रेंस ऑफ द सोल। जो बहुत सुंदर बात मुझे ये सीखने के लिए मिली जब डेप्थ में हम गए, स्पिरिचुअलिटी इज द कोर ऑफ इनर बीइंग विच मेक्स ईच ऑफ अस सो स्पेशल। Spirituality stabilizes a person in the real and original self and enables human beings to experience their divine worth and dignity. अब यहां जब हम values की बात करते हैं तो values अगर हम definitions में बहुत detail में जाते हैं, लेकिन एक simple उसमें अगर हम जाते हैं, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी कि आप value को लेकर क्या समझते हैं। आपके जीवन में वो एक शब्द भी हो सकता है जो आपके जीवन में इतनी इम्पोर्टेंस दे देता है और दूसरा व्यक्ति जो आपके साथ इंटरेक्ट करता है उसको भी आप वैल्यूबल बना लेते हैं। तो गवर्नेंस के लिए स्पिरिचुअलिटीज एंड वैल्यूज दे आर इन लिंक, बिकॉज द स्पिरिचुअलिटी इज द फाउंडेशन। और जहां फाउंडेशन है, फाउंडेशन के साथ में जब हम बिहेव करते हैं, जब हम बात करते हैं, जब हम इंटरेक्ट करते हैं, तो उस समय जो वैल्यूज हैं वो दिखाई देती है हमारे बिहेवियर के साथ। और वो कैसे, जैसे हम एक कुछ एक सेट लेते हैं वैल्यूज का, तो आप देखिए कि सबसे ज्यादा हमारे जीवन में क्या आवश्यकता है गवर्नेंस के लिए। हम बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं कभी कभी, और वहां हम एक छोटी सी बात कभी कभी भूल जाते। एक बार एक राजा ने अनाउंसमेंट की कि जो भी पेंटर है या चित्रकार है, पीस पर जो भी पेंटिंग बनाएगा उसको इनाम दिया जाएगा। तो उस समय बहुत सारे आर्टिस्ट आए और उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाई, अलग अलग प्रकार की पेंटिंग्स थी, लेकिन उसमें से एक पेंटिंग ऐसी थी जिसमें कि चारों तरफ कोई भी ग्रीनरी नहीं थी और बिल्कुल सूखे पहाड़ थे, और जैसे दिखाया गया कि झील भी जैसे आग दिखा रही थी, जहां पर कोई भी आसपास वृक्ष नहीं थे। और उस समय में एक, आपने देखा होगा कभी कभी पहाड़ों के बीच में दरार में एक छोटी सी टहनी या छोटा सा पौधा निकल जाता है, तो एक छोटा सा एक टहनी पेड़ की तरह निकले हुए उस छोटे से स्थान पर एक चिड़िया बैठी हुई थी और वो अपने बच्चों को क्या डाल रही थी, चोंच से दाना खिला रही थी। तो आप सोचिए कि किसको इनाम मिला होगा, किसको इनाम मिला होगा जी? क्यों, और भी बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग सारी थी ही पीस पर, और ये थोड़ी अलग थी, लेकिन इसको ही क्यों मिला? रेगिस्तान में फूल खिलाने वाली बात जो हमारे आज का विषय है कि गवर्नेंस, परिस्थितियां बिल्कुल अलग हो सकती हैं, बिल्कुल विपरीत भी हो सकती है, लेकिन वो बहुत ही शांति से अपना कार्य कर रही थी। और यहां पर जरूरत है हमारे जीवन में शांति के साथ साथ खुशी की, क्योंकि जब हम आध्यात्मिकता की बात करते हैं, स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, इट मीन्स लिविंग अ हैप्पी लाइफ एंड इट इज अ डेली डिसीजन। हमारे ग्लोबल हॉस्पिटल में एक वाक्य आते जाते बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करता है, दैट इज हैप्पीनेस इज अ डेली डिसीजन। अगर हम सुबह उठकर ये चूज करते हैं, हैप्पीनेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, बहुत सिंपल सी बात हमें लगती है, लेकिन जब हम वैल्यूज और स्पिरिचुअलिटी को ले ले तो शायद सारा दिन स्पिरिचुअल रहने के लिए एक ही बात बहुत अच्छी है कि हम कोशिश करके मेंटेन करें अपनी खुशी को। शायद कई बार हम चिंता बहुत करते रहते हैं और जब रेड लाइट आ जाती है और उस समय भी स्टॉप होते हैं, लेकिन बहुत सारी चिंता के साथ सोचते रहते हैं। और हमारे जीवन के अंदर जो हमें गवर्नेंस में, क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल में आते हैं, जो हमें इस ईश्वर विश्वविद्यालय में मैंने बहुत कुछ सीखा हमारे सीनियर से, दादी प्रकाशमणि जी जो हमारी चीफ ऑफ ब्रह्म कुमारीज है, दादी जानकी जी जो आपसे नहीं मिल पाए हैं, शी इज 97 ईयर्स ओल्ड एंड द मोस्ट स्टेबल माइंड ऑफ द वर्ल्ड, उनसे हमने गुड गवर्नेंस सीखी कि कैसे जीवन के अंदर जो आध्यात्मिकता है, व्यक्ति हम मदर टेरेसा को ले ले, महात्मा गांधी को ले ले, एक बात उनके गवर्नेंस में थी और वो थी पॉजिटिविटी। क्योंकि जितना जितना हम नेगेटिविटी को एक्सेप्ट करते चले जाते हैं, और फिर आता है यूनिवर्सल लव। जब हम गवर्नेंस की बात करते हैं तो आप सभी को भी क्या पसंद है, कोई व्यक्ति कितना भी अच्छा गवर्नेंस करता हो, रूल करता हो, मैनेजमेंट करता हो, लेकिन अगर वो आपसे प्यार से नहीं बात करता या हमेशा ही डांटता है तो आपको क्या लगेगा? दिस इज व्हाट अ ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड वैल्यूज, कि हम वास्तव में जब एक दूसरे से मिले, क्योंकि मैंने देखा टीचिंग प्रोफेशन में भी अभी समय की कमी और कभी कभी इतने प्रेशर्स हो गए हैं कि हम शायद कभी कभी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो इसीलिए लाइटनेस एक ऐसी यूनिवर्सल क्वालिटी है, क्योंकि हम आजकल देखते हैं कि हमारा एक तो वेट दो चीजों से बढ़ रहा है, और रिसर्च स्टडीज कहती हैं कि ओवर ईटिंग से तो वेट बढ़ता ही है, लेकिन दूसरा वेट क्यों बढ़ता है? यहां पर जब हम हैवी रहते हैं, और यहां जब हम हैवी रहते हैं तो क्या होता है, उसका असर कहां होता है? दिमाग पर होता है। या तो हम बहुत ज्यादा खाने लग जाते हैं या फिर हम नहीं खाते हैं, दोनों ही बातें होती है, या हम अच्छी तरह से कार्य नहीं करते। इसीलिए जो गवर्नेंस के लिए स्पिरिचुअलिटी और वैल्यूज को कंबाइन करता है कि हम हमारे जीवन में कैसे रहे, बीच बीच में उसका बहुत अच्छा तरीका आपको मिल रहा है, या मेडिटेशन जो आप करते हैं उसका आप देखते हैं हमारा ट्रैफिक कंट्रोल का रिकॉर्ड बचता है और कुछ समय के लिए वापस वो जर्नी शुरू कर देते हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये है कि थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाइए और थोड़ी देर के लिए फिर से लाइट हो जाइए, और उसके साथ साथ बहुत सुंदर क्वालिटी जो हमारे जीवन में, इसको कभी भी हम इस क्वालिटी को, जो स्वीटनेस है, इसको कभी भी हम इस प्रकार की क्वालिटी समझ के न चले। क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा जो मौका मिलता है वो डिफेंस पीपल, उनकी मैं फैकल्टी हूं, मैं आर्मी में, पुलिस, नेवी, सब जगह जाती हूं पिछले 15 सालों से, तो मुझे ये हमेशा एक प्रश्न पूछते, क्योंकि उनको हमेशा उनकी यूनिफॉर्म के अकॉर्डिंग स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है, और वो कहते कि अगर हम ऐसे रहेंगे तो हम हमारी बात कौन सुनेगा। तो हम उनसे ये जरूर कहते हैं कि हमारी आत्मा की जो है भीतर की क्वालिटी है, और आप देखेंगे कि यहाँ पर जगह जगह आपको कहीं ना कहीं लिखा हुआ मिलेगा, स्पीक स्लोली, स्पीक स्वीटली, ये आपको जरूर वाक्य मिलेंगे। कहने का मतलब है कि जब हम यूनिवर्सल वैल्यूज की बात करते हैं, स्पिरिचुअलिटी इज स्वीटनेस। और हमारे जीवन के अंदर एक बार की बात है कि दो चींटियां थी, वो फ्रेंड्स थी। तो एक चींटी जो थी, आंट थी, वो नमक के साथ में रहती थी, नमक की बोरी में घूमती रहती थी, और एक चीनी की बोरी में। अब जो चीनी की बोरी वाली थी, उसने नमक की बोरी वाली को अपने पास इन्वाइट किया, बहन तुम मेरे घर मिलने आना। वो उसके पास आई और उसने उसको क्या ऑफर किया, क्योंकि वो तो चीनी की बोरी में थी ना, तो उसने चीनी दी। कहा तो जब ऑफर किया तो उसने उसका चेहरा देखा कि उसको खाने के बाद भी उसका चेहरा कैसा है, कड़वा सा ही चेहरा लगा। उसने कहा बहन तुमने खाया, क्या खाया? उसने कहा कैसा लगा तुमको इसका टेस्ट? तो कहा नहीं, कड़वा ही था। तो कहा तुम अपना मुंह खोलो। तो मुंह खोला तो देखा पहले से ही नमक था उसके मुंह में। तो जो नमक था पहले, उसको निकाला नहीं तो मिठास का क्या असर होगा? तो उसने कहा पहले तुम नमक निकाल दो, अपने मुंह में जो है वो बाहर फूंक दो, फिर तुम्हें टेस्ट आएगा। तो उसने ऐसा किया। कहा हाँ बहन, ये तो मैंने पहली बार टेस्ट किया। तो इसीलिए क्या होता है कि हम जब जीवन में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी और वेस्ट की कड़वाहट रखते हैं, तो कभी कभी बहुत सारी स्वीट बातें भी हमें कैसी लगती है, कड़वी लगती है। और यहां हम आते हैं कि हमारी गवर्नेंस को मैनेज कौन कर रहा है, कौन है ये जो पावर्स को कंट्रोल करने वाली शक्ति है? वो भीतर की स्पिरिट, आत्मा, जो हमारी टोटल स्पिरिचुअलिटी और वैल्यूज को कवर कंट्रोल करती है, राइट डायरेक्शन देती है। लेट अस सी द इनर टीम। हम देखेंगे कि हमारी जो अवेयरनेस है, एक सिंपल सी एक वाक्य हमें पूरी स्पिरिचुअलिटी का सार दे देता है। एंड दैट इज व्हाट आई एम अ पीसफुल बीइंग। हम इंडिपेंडेंट भी हैं, खुश भी हैं, फ्री फ्रॉम इन्फ्लुएंसेस हो जाते हैं और डिटैच्ड हो जाते हैं, और माइंड की स्टेबिलिटी आ जाती है। और यहां हम देखते हैं कि आइए हमारी जो भीतर की टीम है वो कितनी स्ट्रांग है और गवर्नेंस करती है। सबसे पहले मिलते हैं हमारी सबसे शक्तिशाली एक पावर, जो माइंड है, जो हमें ये पावर देती है कि हम किस प्रकार के थॉट्स, इसको डिटेल में न लेके आप सभी को ये चैप्टर मिला है ऑलरेडी, लेकिन ये टीम जो है हमारी, ये हमें वास्तव में गुड गवर्नेंस सिखाती है। तो इसीलिए जब हम मेडिटेशन करते हैं, ये मैं आपको अपने डॉक्टरेट की दो स्टडीज शेयर करना चाहूंगी और पूरा करती हूँ यहाँ पर। मैंने 4 मेजर स्टडीज कंडक्ट की स्पिरिचुअलिटी और यूनिवर्सल वैल्यूज पर, जिसमें कि एक कनाडा में सेंट जेवियर्स यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स पर की, बिफोर एंड आफ्टर रिजल्ट। हमने पुलिस ऑफिसर्स पर किया, जहां मैं 15 साल से जा रही हूँ, और साथ साथ में हमने किया पेशेंट्स के ऊपर। हमने 2000 से भी ऊपर हार्ट पेशेंट्स को ठीक किया, डायबिटीज पेशेंट्स को ठीक किया, और हमने ये देखा कि जब ये आपके सामने रिजल्ट्स हैं, दिस इज व्हाट अ डिफरेंस बिफोर एंड आफ्टर, कि 40% से जो उनका पहले था, जब हम इन ऑफिसर्स को स्पिरिचुअलिटी और वैल्यूज को इंट्रोड्यूस किया, और उसके बाद ये स्कोर 80% तक पहुंच गया। और उसके बाद साथ साथ में ये यूनिवर्सल वैल्यूज स्पिरिचुअलिटी, जब हमने बात की उनको कि किस प्रकार से मेडिटेशन करने से, आध्यात्मिकता से उनके जीवन में परिवर्तन आता है, तो ये कोर वैल्यूज जो कि हमें गुड गवर्नेंस के लिए आवश्यक है, और जैसे जैसे हम अपने जीवन के अंदर इन वैल्यूज को लेकर आते हैं, तो अंत में मैं यही कहूंगी कि हमारा जो गवर्नेंस है वो हमारी डे टू डे लाइफ के साथ कनेक्टेड है। तो जितना जितना हम वैल्यूज को जीवन में लेकर आते रहेंगे, वो हमें लाइफ में बहुत मदद करती है। और हम ये ना भूलें कि हमारे जीवन में मेडिटेशन जो है वो एक बहुत बड़ी पावर है और उसको हम अवश्य अपने जीवन में धारण करेंगे। और आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हम सभी कुछ क्षण के लिए गुड गवर्नेंस के लिए, मैं एक बात अवश्य कहूंगी कि जहां पर नहीं हम मैनेज कर रहे हैं, अवश्य ही प्रतिदिन जो है हम परमात्मा से जरूर शक्ति लें। आप भी गा सकते हैं, कुछ सेकंड्स के लिए खड़े होना चाहे तो खड़े हो जाइए, बहुत देर से बैठे। धन्यवाद। इसी प्रकार परमात्मा से अवश्य शक्ति लेते रहें, रोज मेडिटेशन करें, तो इससे हमारी गवर्नेंस बहुत पावरफुल हो जाएगी कि सोचों को बदलने से ही हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। कि सोचों को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नजरों को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे, किश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, किश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे बदल जाएंगे, दिशाओं को बदलो तो किनारे बदल जाएंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्मा कुमारी बिन्नी बहन, आपने बहुत सुंदर शब्दों में हमें वैल्यूज की परिभाषा सिखाई। अब मैं बुलाना चाहूंगी प्रोफेसर JPN मिश्रा जी को। आप PhD हैं फिजियोलॉजी में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, और आपने यू हैव ऑल्सो वर्कड एज असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिजियोलॉजी एट जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एंड ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली, एंड यू आर करेंटली वर्किंग एज प्रोफेसर हेड एंड डीन ऑफ ह्यूमैनिटीज एट जैन विश्व भारती यूनिवर्सिटी लाडनू राजस्थान। यू हैव 6 बेस्ट प्रेजेंटेशन अवार्ड एंड 1 UGC अवार्ड। सो आई वुड आस्क हिम टू प्लीज कंटिन्यू द सेशन।
परम आदरणीय BK बहन डॉक्टर बिन्नी, रेस्पेक्टेड डॉक्टर पंडा, मंच संचालिका बहन, मेरे समक्ष बैठे हुए आदरणीय इंटेलेक्चुअल्स, प्रोफेसर्स, टीचर्स, स्कॉलर्स एंड स्टूडेंट्स, बहनों और भाइयों, मैं अपनी बात कृतज्ञता से शुरू करना चाहूंगा। मेरे ख्याल से इस सदन में जितने लोग बैठे हैं, मैं इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सबसे कम उम्र का छात्र हूं, इसलिए कि मैंने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में प्रवेश ही अभी 2 दिन पहले लिया है। मैं हृदय से अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहूंगा आदरणीय भाई मृत्युंजय जी को, बीके बहन सुप्रभा जी को, बीके बहन सुमन जी को और मेरे अनुज भ्राता श्री बालकिशन जी को, जिनकी प्रेरणा और जिनके मोटिवेशन से मैं यहां आज आ सका। पिछले 24 सालों से मैं राजस्थान में हूं और मुझे ये नहीं मालूम था कि मेरे पड़ोस में स्वर्ग है, मुझे कभी याद ही नहीं आया। खैर, जब जागे तभी सवेरा। अभिभूत हूं मैं यहां जो कुछ मिला है पिछले 3 दिनों में। आया तो था गेस्ट बनकर और जाऊंगा तो परिवार का सदस्य बनकर, इस पर मुझे गर्व रहेगा। कुछ बातें टॉपिक की करना चाहूंगा आपके सामने। 2 तरह के गवर्नेंस सिस्टम्स होते हैं, एक जिसे हम सिस्टम गवर्नेंस या स्ट्रक्चरल गवर्नेंस कहते हैं और दूसरा जिसे हम सेल्फ गवर्नेंस कहते हैं। स्ट्रक्चरल गवर्नेंस में उसके 3 डायमेंशंस होते हैं, 1 प्लानिंग, 2 एग्जीक्यूशन, 3 मॉनिटरिंग फीडबैक एंड फॉलोअप। किसी भी गवर्नेंस के लिए, चाहे वो परिवार के स्तर पर हो, चाहे वो समाज के स्तर पर हो, चाहे वो राष्ट्र के स्तर पर हो, संस्था के स्तर पर हो, कॉलेज के स्तर पर हो, यूनिवर्सिटी के स्तर पर हो, गवर्नमेंट के स्तर पर हो, ये तीनों ही स्टेप्स प्रायः किसी न किसी रूप में पाए जाते हैं। अब किसी भी गवर्नेंस की शुरुआत प्लानिंग से होती है, योजनाएं बनानी पड़ती हैं और योजना बनाने के लिए कमिटीज होती हैं, एडवाइजर्स होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, उनकी मदद से योजनाओं को कार्य रूप दिया जाता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जितने भी डॉक्टर पंडा साहब यहां बैठे हुए हैं, उनको मालूम है कि गवर्नेंस कैसे की जाती है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। जितने भी कमेटी के सदस्य होते हैं या इवन इंडिविजुअल अगर कोई प्लानर है तो भी, हर एक के साथ जो वैल्यूज जुड़ी होती हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि उन वैल्यूज का ही इफेक्ट और मैनिफेस्टेशन प्लानिंग में एग्जिबिट होता है, दिखाई देता है। और वो जो वैल्यूज हैं जो प्लानिंग के साथ जुड़ी होती है, वो होती हैं थिंकिंग पावर एंड विजनरी पावर। आपकी सोचने की क्षमता क्या है और आपका विजन क्या है, आपका मिशन क्या है। और हम पिछले 3 दिनों से ये सुनते आ रहे हैं कि थिंकिंग पावर को इन्फ्लुएंस क्या करता है। सबसे ज्यादा अगर थिंकिंग पावर को कोई चीज, कोई वैल्यू इन्फ्लुएंस करती है तो वो है मेंटल पीस। जो व्यक्ति जितना ही मेंटल पीस, काम और कूल नेचर का होगा, उतना ही वो एफिशिएंट प्लानर होगा। टू माय माइंड जो नेक्स्ट स्टेप है वो एग्जीक्यूशन है। एग्जीक्यूशन के लिए जो प्लानर होता है वही रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, एग्जीक्यूट करने वाले अनेक लोग होते हैं, अनेक स्तर के लोग होते हैं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लेकर के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तक होते हैं। हर एक का अपना अपना रोल होता है, हर एक की अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है। लेकिन अगर एग्जीक्यूशन का इवेल्युएशन हमें करना है तो उसके लिए जो 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 रिजल्ट हमें मिलेगा वो इन जो ये हर स्टेप पर जो उसको एग्जीक्यूट करने वाले इंडिविजुअल्स हैं उनके साथ जो वैल्यूज जुड़ी होती हैं वो मुख्यतः तीन होती हैं। नंबर वन, डेडिकेशन, उनका समर्पण कितना है अपने काम के प्रति। नंबर टू, ऑनेस्टी, ईमानदारी काम के प्रति। और तीसरा और सबसे बहुमूल्य है हार्डवर्क, परिश्रम, वो कितनी परिश्रम करते हैं। जाहिर है कि अगर एग्जीक्यूट करने वाले जो यूनिट्स हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, अगर उनके अंदर ये क्वालिटीज हैं, ये वैल्यूज हैं, तो एग्जीक्यूशन परफेक्ट होगा। और तीसरा और आखिरी जो कंपोनेंट है गवर्नेंस का, वो है फीडबैक एंड फॉलो। अब फीडबैक और फॉलो, अगेन वी कम टू दी प्लानर, जो प्लान करने वाला है, जो विजनरी है, उसके पास वो फीडबैक करता है कि जो हमने प्लान किया था वो एग्जीक्यूट हुआ या नहीं हुआ। उसके लिए अगेन उसके साथ दूसरी दो वैल्यूज एसोसिएट हो जाती हैं, और वो हैं फेयर असेसमेंट, फेयर रियलाइजेशन या फेयर असेसमेंट ऑफ द वर्क डन, और दूसरी बात डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द यूनिट्स हु आर वर्किंग फॉर द एग्जीक्यूशन। अब इसमें जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं वो उसके वो जो गवर्नर होता है, जो प्लानर होता है, जो मालिक होता है, उसके अंदर दो बातें होना आवश्यक है, करुणा और सद्भावना। अपने स्टाफ के प्रति, अपने सबोर्डिनेट्स के प्रति अगर उसके मन में करुणा है, अगर उसके मन में सद्भावना है, तो वो फेयर असेसमेंट करेगा कि एग्जीक्यूशन हुआ, वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ तो कहां कमी रह गई। वो करुणापूर्वक, सद्भावनापूर्वक अगर असेसमेंट करेगा तो निश्चित रूप से वो सही नतीजे पर पहुंचेगा और फिर वापस उसको करेक्ट किया जा सकता है। तो बहनों और भाइयों, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि गुड गवर्नेंस के लिए वैल्यूज की इतनी इंपॉर्टेंस होती है। अब कुछ बातें ऐसी हैं, ये तो सिद्धांत की बातें हैं, मेरे पास समय केवल 10 मिनट का है और मैं नहीं चाहता कि मेरे पास बहन पर्ची भेजे, सो बेहतर है कि मैं अपनी बात संपन्न करूं। कहना यह चाहता हूं कि मूल्य आधारित और आध्यात्मिक अगर आपको गवर्नेंस का उदाहरण देखना है तो कहीं दूर जाने की जरूरत है नहीं, आप इसी परिसर में देखिए ना। मैंने तो पिछले चार दिनों से मैंने ये देखा है कि गवर्नेंस कौन कर रहा है, कम से कम मैं इस बात तक नहीं पहुंच सका कि हु इज द गवर्नर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। मैं तो एक छोटी सी बात कह रहा हूं कि मेरे एक मित्र, मैं नाम लेकर के कहूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, हम लोग चाय पी रहे थे, गवर्नेंस और असेसमेंट कैसे होता है देखिए, कि हम सब चाय पी रहे थे, वहां बैठे हम लोगों ने अपना अपना गिलास उठा करके और जो जूठे बर्तन का बर्तन है उसमें रखा, और उन्होंने वहां पड़े हुए तीन चार और गिलास जो थे उसको भी उठाया और उसको भी उठा के उसमें रख दिया, जबकि हमारी दृष्टि, हमारी बुद्धि वहां तक नहीं पहुंची कि वो तीन गिलास वहां पड़े हुए उसे हम ही उठा के रख दें। तो ये जो इस परिसर का, इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की विशेषता है, क्या हम इससे भी बेहतर गवर्नेंस, मुझे नहीं मालूम कि कौन गवर्न कर रहा है और कौन करने वाला है और कौन एग्जीक्यूट करने वाला है और कैसे काम हो रहे हैं। कम से कम मैं अक्रॉस द ग्लोब मैंने ट्रेवल किया है, मुझे ऐसी व्यवस्था कहीं देखने को आज तक नहीं मिली। एक बात अंत में कहना चाहूंगा, बहुत सारी जगहों पर बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में, इंटरनेशनल और इंटरकॉन्टिनेंटल कॉन्फ्रेंसेज में और सेमिनार्स में मैंने पार्टिसिपेट किया, कहीं भी यात्रा भोजन की व्यवस्था मैंने नहीं देखी। पहली बार मैंने इस परिसर में यात्रा भोजन की व्यवस्था देखी। इसको कहते हैं गवर्नेंस, व्यक्ति के हर सुख दुख का ध्यान रखना। करुणा के बात आ गई ना, तो इसको कहते हैं गवर्नेंस विद करुणा। और एक आखिरी बात और, कि गवर्नेंस को अगर गुड गवर्नेंस में कन्वर्ट करना है तो जो गवर्नर होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन को गवर्न करता है, उसे वो सारी वैल्यूज अपने अंदर पहले डालनी पड़ेगी, तभी वो उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कर सकता है। मैं अपना व्यक्तिगत उदाहरण आपके सामने देना चाहूंगा। मैं कुछ दिनों तक अपने विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार रहा, और हमारे यहां प्रार्थना होती है स्टाफ की, टीचिंग नॉन टीचिंग प्रोफेसर्स लेक्चरर्स सबकी कंबाइंड मॉर्निंग प्रार्थना होती है। मेरे से पहले जो रजिस्ट्रार थे उनके जमाने में वो डिसकंटिन्यू हो गए। डिसकंटिन्यू क्यों हो गई कि रजिस्ट्रार साहब आते नहीं थे, डिप्टी रजिस्ट्रार साहब आते नहीं थे, असिस्टेंट रजिस्ट्रार साहब आते नहीं थे, कुछ प्रोफेसर सीनियर आते नहीं थे, तो नतीजा ये हुआ कि वो धीरे धीरे एक एक करके लोग कम होते गए और अंततोगत्वा वो बंद हो गई। जब मैं आया एज ए रजिस्ट्रार तो मैंने अपने पीए से पूछा, भाई ये बंद क्यों हुई प्रार्थना? उसने कहा, साहब रजिस्ट्रार साहब वीसी साहब नहीं आते थे इसलिए प्रार्थना बंद हो गई। मैंने कहा तो कल से मैं आता हूं, और आपको जान के बहुत सुखद आश्चर्य होगा कि मैंने नेक्स्ट डे जब मैं प्रार्थना में गया तो मैं था और मेरा पीए था। उस दिन प्रार्थना में दूसरा कोई नहीं था, केवल दो व्यक्ति थे, मैं और मेरा पीए। मेरे पीए की मजबूरी थी कि मेरे साथ उसको जाना था, लेकिन दूसरा कोई नहीं था। अगले दिन फिर मैं गया प्रार्थना प्रसाद में, तो वहां देखा तो मेरे से पहले सारा स्टाफ बैठा हुआ था। मेरी बात आप समझ चुके होंगे कि गुड गवर्नेंस के लिए अगर उन चीजों को पहले हम अपने अंदर, उन वैल्यूज को हम अपने अंदर पहले खुद इम्प्लीमेंट करें, तो निश्चित रूप से आपके सहयोगी, आपके सहपाठी, आपके सहवासी और आपका अनुकरण करने वाले उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उसका आपका साथ देंगे, और यू विल बी प्रूव्ड टू बी ए गुड गवर्नर और ऑर्गेनाइजेशन में गुड गवर्नेंस प्रिवेल करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः पूरे विश्वविद्यालय परिवार को, ईश्वरी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय परिवार को मैं बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं कि मुझे आपके सामने अपने विचार शेयर करने का मौका मिला। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद जयप्रकाश नारायण जी। आपने एक बात पूछी कि यहाँ का गवर्नेंस कौन कर रहा है। मैं आप सबको बता दूं, यहाँ का गवर्नेंस स्वयं परमपिता परमात्मा शिव दी ऑलमाइटी अथॉरिटी जो है उसके हाथ में है, और इसलिए इतना हर चीज स्मूथ चल रही है। और सभी भाई बहन यहाँ पे जो भी निमित्त हैं वो सिर्फ निमित्त मात्र यानी सिर्फ ट्रस्टीज होके अपना कार्य करते हैं। तो अब आगे मैं बढ़ूंगी, मैं आगे अब बुलाना चाहूंगी मिस्टर संतोष पांडा जी को, वेरी इन्फ्लुएंशियल एंड वेरी एक्सपीरियंशियल फिगर इन फील्ड ऑफ एजुकेशन। आपने अपना पीएचडी कंप्लीट किया है और आप इग्नू में प्रोफेसर और डायरेक्टर हैं, एंड करेंटली यू आर दी चेयरपर्सन ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मैं आपको बुलाना चाहूंगी कि इस सेशन को आगे बढ़ाएं।
ओम शांति। मुझे 5 मिनट दिया गया है, मैं 3 मिनट और मांगा हूं, 8 मिनट मेरे पास है। मुझे पता नहीं, लेकिन पहले से मैं कहना चाहूंगा मैं बड़ी आभार हूं प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का और सभी का जो मुझे यहां पधारने के लिए और आपसे मिलने के लिए मौका दिया। क्यों बुलाया मुझे पता नहीं, लेकिन बुलाना चाहिए था कि नहीं, मैं थोड़ा एक शब्द में कहना चाहूंगा। अभी वैल्यूज एंड गवर्नेंस की आप बात करते हैं, और मैं जिस संस्था की अभी देखभाल कर रहा हूं, ये रेगुलेटर है पूरी टीचर एजुकेशन का देश का, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट, यूजीसी, सबको मान्यता है, प्री स्कूल एजुकेशन से लेकर यूनिवर्सिटी एजुकेशन तक, टीचर एजुकेशन, सभी के बच्चे स्कूल जाते हैं, सभी मास्टर्स जी चाहते हैं, सभी स्कूल्स के मास्टर्स हैं, वो मास्टर को हम बनाते हैं, और मास्टर को जो पढ़ाएंगे उनको भी हम बनाते हैं, और जो संस्था उसको हम रेगुलेट करते हैं, जिनमें से आज की तारीख में 150 से 200 से लेकर आज की तारीख में 16,000 संस्था है, बताइए, और उनमें से 90% प्राइवेट में है। और इस मोड पर ये संस्था, ये पूरी संस्था टीचर एजुकेशन काउंसिल इस मोड पर पहुंच गया, मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है कि देयर वाज रैम्पेंट करप्शन लाइक एनी अदर काउंसिल। देयरफॉर ये जो आप वैल्यूज की बात करते हैं एक तरफ और करप्शन एक तरफ दूसरी तरफ, उसके बीच में आपको कैसे जूझना पड़ेगा, तो मुझे इसलिए थोड़ा सा इतराज तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा हिचकिचाहट लग रहा है कि मैं जिस संस्था को रिप्रेजेंट करता हूं जो इतना डूबा हुआ है इन चीजों में, उसको वैल्यूज की आप चेयर बना रहे हैं यहां, बताइए। फिर भी मैं इसको मुनासिब समझता हूं और मैं दो चार शब्द आपके सामने रखना चाहता हूं जिन्हें मैं जूझ रहा हूं। मेरी इस संस्था के साथ ताल्लुकात बहुत दिन पुराना नहीं है, बहुत नया है और अभी तो सरकार बदल गई है। लेस गवर्नमेंट एंड मोर गवर्नेंस, उसकी चर्चा हो रही है। उसी चर्चा के तहत और यहां जो मैं सीख रहा हूं, मैं तो सीख निकले आया था असल में, जो सीख रहा हूं उनको मैं आपके सामने रखूंगा, क्योंकि मुझे टीचर एजुकेशन को अगले 4 या 5 साल जूझना है उसके साथ। और इसलिए आपके साथ चाहिए और आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए और आपके एंगेजमेंट चाहिए इसको आगे बढ़ाने के लिए। जब गवर्नेंस की हम बात करते हैं, मुझे ये महसूस होता है, क्यों मेरी मुश्किल आप थोड़ा समझिए। आप कहते हैं मुश्किल की बात मत करो, ऊपर बाला के ऊपर छोड़ दो, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आपके साथ जूझना चाहता हूं। मेरी मुश्किल ये है, आप कितने भी थियोरेटिकली या प्रैक्टिकली इंडिविजुअली लाइफ में यू हैव अ वेरी ग्रेट डिस्कोर्स ऑन वैल्यूज इन इंडिविजुअल लाइफ इन कम्युनिटी सच places like this, a great organization. What you have to actually do is that you have to implement in practice in organizational development. कैसे करेंगे? मैं उसकी आपसे सलाह चाहता हूं, आपकी एडवाइस चाहता हूं, आपकी ब्लेसिंग्स चाहता हूं। बताइए इसको आप एक संस्था में जो शिक्षा और शिक्षण, मेरी संस्था का नाम कभी कभी भूल जाता हूं, अंग्रेजी में तो जानता हूं, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, ये स्टैट्यूटरी बॉडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, सभी को मान्यता है, ये रेगुलेटर है, हर चीज को और क्वालिटी को रेगुलेट करता है और देयरफॉर टीचर एजुकेशन और टीचर्स की क्वालिटी को रेगुलेट करता है जहां आपके बच्चे पढ़ते हैं। तो उसको कैसे काम में लगाया जाए जिस मोड पर हम खड़े हैं। इसलिए मैं तो पिछले 3-4 महीना से जूझ रहा हूं, आगे जूझूंगा, लेकिन आपकी सलाह चाहिए। लेकिन कुछ शब्द आपके सामने मैं रख दूं, मुझे लगता है ट्रांसपेरेंसी सबसे बड़ी चीज है। ट्रांसपेरेंसी, हम ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं और जब ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं वहां अकाउंटेबिलिटी की गुंजाइश नहीं रहती, देयरफोर हम वहां एंगेज होना नहीं चाहते। ये 3 चीजों को मैं लेता हुआ, ये जो संस्था काफी गंभीर रूप से कई माने में कई हद तक गिर चुका है, उसको अगर आप उठाना चाहेंगे और टीचर एजुकेशन और टीचर्स की क्वालिटी बढ़ाना चाहेंगे, ये वही संस्था है जो बढ़ाएगा। आप और हम तो साथ देंगे, संस्था यही है और इनमें जितने लोग काम करते हैं, लगभग 1.5 लाख टीचर एजुकेटर्स और 16,000 संस्था जो इस पर काम करते हैं, सरकारी और प्राइवेट। इसको ट्रांसपेरेंट बनाना, अकाउंटेबल बनाना और उनके साथ जूझना, उनके साथ डायलॉग और एंगेजमेंट में रहना, ये मेरा पहला काम है और उसकी मैं सलाह आपसे चाहता हूं जिसको मैं करना चाहता हूं। सारा देश सुप्रीम कोर्ट, मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि इतना डूब गया था, कहीं किसी भी काउंसिल, किसी भी शिक्षा, किसी भी प्रोफेशनल एजुकेशन की यह हालत नहीं हुई थी जो टीचर एजुकेशन की हुई है, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इसको अपने आप कमीशन बैठा के इसको चलाने लगी है। आई एम रिपोर्टिंग टू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उसकी निगरानी पर यह परिवर्तन और रिफॉर्म्स हो रही है। देयरफॉर जो होगा वो सबको मान्यता होगा, सुप्रीम कोर्ट को मान्यता होगा, गवर्नमेंट को मान्यता होगा। हमारे हाल ही में रेगुलेशन बनी है, नई रेगुलेशन, रेगुलेशन सबको रेगुलेट करता है। मैं कभी कभी सोचता हूं ये रेगुलेशन वैल्यूज को कैसे रेगुलेट करेगा, बताइए, सोचने वाली बात है। आप रेगुलेट करेंगे चाहे वो AICTE हो, UGC हो, कोई भी हो, वैल्यूज को रेगुलेट कैसे करेगा? मैं एक दो शब्द आपके सामने रखना चाहूंगा। सेल्फ रेगुलेट होती है तो सेल्फ का और रेगुलेशन के साथ क्या ताल्लुकात है? बिल्कुल, देयरफॉर आप रेगुलेशन के तहत कैसे करना चाहेंगे, ये मैं सवाल रख रहा हूं आपके सामने। देयरफॉर क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? प्रोफेशनल एथिक्स, हम दो चार चीज करना चाहते हैं, हर चीज को ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं, कुछ भी चीज कहीं भी हो, क्लासरूम में का जो पढ़ाई भी है वो भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? आप किसी भी तरह करें, बहुत साधन है, उसको ट्रांसपेरेंट करना जरूरी है और सभी को अकाउंटेबल होना जरूरी है। और सही कहा मिश्रा जी ने, प्रोफेसर मिश्रा, कि अगर आप सेल्फ एग्जाम्पल नहीं देंगे तो दूसरों को क्या बताएंगे। सेल्फ एग्जाम्पलरी होना बहुत जरूरी है और वही तरीका है, शायद वही तरीका है जिस माध्यम से आप दूसरे को साथ ले चलें, वो कोशिश मेरी है। करिकुलम रिफॉर्म में कैसे करेंगे? अभी हम करिकुलम रिफॉर्म कर रहे हैं, प्री स्कूल एजुकेशन, जहां आपका बच्चा प्री स्कूल क्रेच में जाता है, उसकी शिक्षा, शिक्षक और उसकी करिकुलम से लेके यूनिवर्सिटी टीचर तक, वो हमारे दायरे में है। करिकुलम को आपको कैसे चेंज करेंगे, करिकुलम में वैल्यूज कैसे लाएंगे? मैं उसी पक्ष में नहीं हूं कि आप एक वैल्यू एजुकेशन का एक अलग सा करिकुलम बनाएं। मैं दो चार मिनट और मांगूंगा थोड़ी सी आपके सामने रखने के लिए। अलग सा करिकुलम का कोई माने नहीं रखता, माने तो रखता है लेकिन इस दायरे में माने नहीं रखता कि ये उसी करिकुलम में शामिल हो, पढ़ने पढ़ाने के तरीके में शामिल हो। वैल्यूज एक अलग खड़ा ना रहे और पढ़ने पढ़ाने के तरीके में शामिल हो जाए, उसको कैसे आप करेंगे? देयरफॉर जैसे एनसीईआरटी बगरनामन कहे, उन्होंने आप एनवायरमेंटल एजुकेशन कैसे पढ़ाएंगे, एक अलग सब्जेक्ट, जेंडर कैसे पढ़ाएंगे, सेक्स एजुकेशन कैसे पढ़ाएंगे, एक अलग सब्जेक्ट नहीं। अब जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उसी सब्जेक्ट को उसी माध्यम से पढ़ाइए, जेंडर्ड वे में से पढ़ाइए, एनवायरमेंटली पढ़ाइए, उसी तरीका से पढ़ाइए। चार साल के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम दिल्ली विश्वविद्यालय में शुरू हुआ, आप वाकिफ हैं इन चीजों की, और सारा देश चार साल के तरफ चल पड़ेगा शायद। अभी नई सरकार आई है, नई सरकार के लिए चार साल को हम इवैल्यूएट करेंगे, लेकिन अगर चार साल के चल पड़ी वो किसके ऊपर आधारित था? कंटिन्यूइंग कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जो सीबीएसई का है, जो सारे तमाम स्कूल में चलता है, आप शायद वाकिफ हों, सारे पेरेंट्स हैं, ये मुद्दे हैं, इसमें जूझना जरूरी है। कंटिन्यूइंग कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन ऑफ सीबीएसई कहता क्या है? हर टीचर में कुछ, हर बच्चे में कुछ ना कुछ है और उसके तरीके अलग है, और एक ट्विन जो है, दो बच्चे जो ट्विन है वो भी आपस में अलग हैं, इसलिए हर एक को दूसरी नजरिया से देखना जरूरी है। चार साल का जो प्रोग्राम है, आपको बताता हूं, चार साल का प्रोग्राम जब शुरू हुआ दिल्ली विश्वविद्यालय में, बड़ी उत्साह हुई, बड़ी प्रोटेस्ट भी हुई। मुद्दा क्या था? पहली दिल्ली, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी अभी सेमेस्टर सिस्टम हो गया, जो पहली दो सेमेस्टर है वो फाउंडेशन कोर्सेस हैं, जिसको कहेंगे लाइफ स्किल्स। लाइफ स्किल्स का मतलब क्या है? जीवन में जीने के लिए जो तमाम तरीके जब आपको चाहिए, शक्तियां चाहिए, स्किल्स चाहिए, नॉलेज चाहिए, वो आपको मिलें। लाइफ स्किल्स को कैसे आप सीखेंगे? प्रोफेशनल एथिक्स उसकी भी बात है, एनवायरमेंटल एथिक्स उसकी बात है, एफर्मेटिव एक्शन उसकी बात है, इंक्लूसिवनेस उसकी बात है, डिसेबिलिटी उसकी बात है, जेंडर उसकी बात है, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी उसकी बात है। सारे बच्चे टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं लेकिन शिक्षा के लिए नहीं। ये तमाम चीजें जो है, इसको कैसे करेंगे आप, कैसे इसको शामिल करेंगे? उसका तरीका यह है लाइफ स्किल को, टू लर्न बाय लिविंग थ्रू, आप उसको जी के सीखेंगे, एक तरीका है पढ़ने और पढ़ाने का, नई तरीका, जी के सीखेंगे जो हम जी के सीख रहे हैं, निभा के सीखेंगे। और दिल्ली विश्वविद्यालय में ये तमाम लाइफ स्किल को 40 लेक्चर्स 180 डेज ए ईयर, इसी के माध्यम से लेक्चर से पढ़ाए जा रहे हैं, जिएंगे कब? देयरफॉर मेरी मानना है जो करिकुलम रिफॉर्म्स होते हैं उसको हम गंभीरता से देखने के लिए कोशिश करें। मेटा कॉग्निशन की बात होती है, मैं आपको सामने रख देता हूं, कोई ज्यादा गंभीर जार्गन नहीं है। मेटा कॉग्निशन, मेटा कॉग्निशन का मतलब क्या है, जो किसी जमाने में विवेकानंद भी कह चुके हैं, मेटा कॉग्निशन सिंपल, हर बच्चे का अपने अंदर जो ताकत है, हर एक में है, अपने अंदर जो ताकत है उसको शिक्षक जो है उसको पहचान है और उसको बताएं ये आपका ताकत है, और उस ताकत को अपने आप इस्तेमाल करने के लिए उसको मजबूत बनाए और अपने आप को इस्तेमाल करें और सीख जाए। शिक्षक का काम सिर्फ यही था कि उसकी ताकत को पकड़े और उसको बताएं और उसको आगे बढ़ा लें। इवन ट्विंस आर नॉट द सेम. इसका मतलब हर बच्चे के साथ शिक्षक को जूझना पड़ेगा. मेटाकॉग्निशन सिंपल. हम ये करते हैं? बिल्कुल नहीं. नहीं कर पाते हैं. कैसे आप लाएंगे करिकुलम में इन चीजों को? कोलैबोरेशन, नेटवर्किंग, डायलॉग, सबके साथ मिलकर चलना. मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, नाउ वी आर अंडर ट्रांसफॉर्मेशन, टोटल रिफॉर्म. हम आपके साथ चाहते हैं. एक बार ये रेगुलेशन बनता है 10 साल चल पड़ेगा, आप सब उसमें रेगुलेशन में फंस जाएंगे, सब संस्था फंस जाएंगे. वाइस चांसलर साहब मुझे कह रहे थे इसी रेगुलेशन में हमें एनसीटी का भी दरवाजा खटाया. कहते रेगुलेशन है, इसके अलावा हम कुछ कर नहीं सकते. वैल्यूज को आप कैसे रेगुलेट करेंगे? देयरफॉर मेरी मानना है हम साथ मिलकर वी वॉन्ट टू एंगेज, वी वॉन्ट टू डू हैंड होल्डिंग, वी वॉन्ट टू डिवेलप अवेयरनेस, एंड देयरफॉर वी वॉन्ट टू गेट अलॉन्ग विथ एवरीबॉडी, क्योंकि वो रेगुलेशन के तहत नहीं हो सकता. मैं समझता हूं मैं जो कहना चाहता हूं वो मैं कम्युनिकेट कर पाया हूं. देयरफॉर फाइनली माय सिस्टर दैट वी लुक फॉरवर्ड टू प्रजापति ब्रह्म कुमारी सूर्य विश्वविद्यालय एंड सर्टनली जैन विश्व भारती यूनिवर्सिटी टू गेट एंगेज्ड, लर्न फ्रॉम. हो सकता है हम थोड़ी बहुत वैल्यूज लेके ये पूरी टीचर एजुकेशन में इसको शामिल कर पाए. We need your engagement, we need your blessings, we need your cooperation. Thank you very much.
बहुत बहुत धन्यवाद संतोष पांडा जी. आपने हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस रखे कि कैसे वैल्यूज को हम जीवन में ला सकते हैं. मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि वैल्यूज को अगर जीवन में लाना है तो हमें कुछ लक्ष्य को बदलना होगा. जैसे कुछ पंक्तियां कही गई हैं कि कितनी भी तूने अपने घर में, अपने दुकान में, अपने वाहन में जगह बना ली, लेकिन लास्ट में ये याद रखना कि लोगों के दिलों में कितनी जगह बनाई. बहुत बेचा, बहुत खरीदा, लेकिन ये देखना कि क्या दुआओं के लिए भी कुछ बेचा और क्या दुआएं भी कुछ खरीदी. और अंतिम समय ये हमेशा याद रखा जाता है कि ये नहीं कि हमने तो अपने जीवन में अपने आप को बहुत महान समझा, सोचा, बड़े महान कार्य किए हैं, लेकिन लास्ट टाइम पे सिर्फ ये देखते हैं कि परमात्मा क्या हमें महान मानता है कि नहीं, हमारे कर्म ऐसे महान रहे कि परमात्मा ने हमें महान माना कि नहीं. तो जब हमारे ये लक्ष्य होंगे तो अपने आप ही जीवन में मूल्य आने शुरू हो जाएंगे. और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं सेशन को खत्म करना चाहूंगी. थैंक यू एंड ओम शांति.
ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है. जागो उठ कर देखो जीवन जो जागर है. सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम. सत्यं शिवं सुंदरं सत्यं शिवं सुंदरं सत्य है, सत्य ही शिव है।